ஹரே கிருஷ்ணா. கதா யஹா தக் பஹுஞ்சி தி கி அக்ரூர் ஜி ரத் பர் சவார் ஹோகர் தியான் கர் ரஹே ஹேன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே சௌந்தர்ய ஆதி கே ஊபர் தியான் கர்னே கே பாத் அப் வோ சோச் ரஹே ஹேன் கி ஜப் மே விருந்தாவன் பஹுஞ்ச் ஜாஊங்கா நந்தகிராம் ஔர் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே சாம்னே மே ஆ ஜாஊங்கா தோ மே க்யா கருங்கா. சர்வப்ரதம் மே ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஔர் ஸ்ரீ பலராம் கே சாம்னே பூரி தரஹ சே பிரணாம் கருங்கா. சாத் சாத் உன்கே ஜோ க்வால் பால் மித்ர ஹேன் அன்ய வ்ரஜவாசி ஹேன் உன்கே சாம்னே பி மே ஐசே தண்டவத் பிரணாம் கருங்கா. ஔர் பிர் ஆகே அப்னே விசார் கோ அப்னே தியான் கோ ஆகே படா ரஹே ஹேன் அக்ரூர் ஜி. ஔர் கஹதே ஹேன் கி ஜப் மே ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே சரண கமலோ மே ஸ்தித் ரஹூங்கா தோ உஸ் ஸமய படி கிருபா கர்கே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உன்கா கர கமல் மேரே சர் பர் ரக் தேங்கே. ஜோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே சரண கமலோ கா ஆஶ்ரய சாஹதே ஹேன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உன்கா கர கமல் உன்கே சர் கே ஊபர் ரக் தேதே ஹேன் ஜிஸ்ஸே கி உன்கே ஹ்ருதய மே ஜித்னா பி டர் ஹை வோ சப் தூர் சலே ஜாயேகா. தூசரே ஷப்தோ மே ஜோ பி பத் ஜீவ் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே சரண கமலோ கா ஆஶ்ரய கிரஹண கர்த்தா ஹை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே கர கமல் உஸ்கே சர் பே நிஷ்சித் ஹி ஆதே ஹேன். தோ ஐசா சௌபாக்ய உன்ஹீ கோ மில்தா ஹை ஜோ கிருஷ்ண பாவனா பாவித் ஹோதே ஹேன். தரஹ தரஹ கே லோக் ஹோதே ஹேன் ஜோ கிருஷ்ண பாவனா அம்ருத் மே ஆதே ஹேன். உன்மே ஸே எக் வர்க் ஐசே ஹோ சக்தா ஹை கி ஜோ கோய் பௌதிக் லாப் சாஹதே ஹேன். பக்தி தோ கர்தே ஹேன் பரந்து பௌதிக் லாப் சாஹதே ஹேன். ஜைசே கி இந்திர பலி மஹாராஜ் ஆதி. பலி மஹாராஜ் நே தோ கேர் சரண் லே லியா பரந்து இந்திர ஆதி கபி கபி தோடா குச்ச் பகவான் கோ தான் ஆதி தேகர் பஹத் குச்ச் பாதே ஹேன். வஹா சே ஆகே மத் சோடியே பீச்சே. தோ ஜின்கே மன் மே பௌதிக் இச்சா ஹை ஔர் ஜோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே சரணோ மே சரண் கிரஹண் கர்தே ஹேன் அப்னே கர கமலோ கோ உன்கே சர் பே ரக் கே பகவான் உன்கி சாரி இச்சாஓ கோ பூர்ண கர்தே ஹேன். ஐசே பி லோக் ஹோதே ஹேன் ஜோ முக்தி சாஹதே ஹேன், சன்சார் கே பந்தன் ஸே முக்த ஹோனா சாஹதே ஹேன். தோ ஐசே லோகோ கே லியே பி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே கர கமல் சமர்த் ஹேன் உன்கி இச்சாஓ கோ பூர்ண கர்னே கே லியே. சாத் சாத் மே ஐசே பி கோய் பக்த ஹோதே ஹேன் ஜோ வாஸ்தவ மே ஸ்ரேஷ்ட பக்த ஹோதே ஹேன், ஜின் கே ஹ்ருதய மே தீவிர பிரேம் ரஹதா ஹை சுத்த பிரேம் ரஹதா ஹை பகவான் கே பிரதி. தோ ஐசே லோக் பகவான் கே சானித்ய கோ சாஹதே ஹேன், உன்கா நிஜிய சங்க சாஹதே ஹேன், உன்கே லீலா மே பிரவிஷ்ட ஹோனே கி இச்சா ரக்தே ஹேன் உன்கே தாம் மே. தோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஐசே பக்தோ கே சர் கே ஊபர் கர் கமல் உன்கே ரக் கே உன்கி இச்சாஓ கோ பி பூர்ண கர்தே ஹேன். तो भगवान श्री कृष्ण के कर कमल उनके लिए उपलब्ध हैं जो कि उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं. इस तरह से भगवान के कर कमल बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत ही पावन है. तो तो अक्रूर जी याद कर रहे हैं उन कर कमलों को जो कि अंकित है तरह तरह के चिन्हों से, जैसे कि शंख, चक्र, गदा, पद्म, वज्र आदि, जिससे कि भगवान हैं ये ऐसे पहचाना जा सकता है उनको। जिस तरह से उनके चरण कमलों में, तलवों में चिन्ह होते हैं विशेष तरह के, उसी तरह से उनके कर कमलों में भी होते हैं। इससे भगवान पहचाने जा सकते हैं। तो उन्हीं कर कमलों से भगवान आशीर्वाद देते हैं, कृपा रखते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और अक्रूर जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं वो सदा भयग्रस्त रहते हैं। भौतिक जगत की पहचान ही ऐसी है कि ये भय से भरा हुआ है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। भय इसलिए उत्पन्न होता है इस भौतिक जगत में कि हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। भगवान की तरफ यदि हम मुड़ के देखें, उनके आश्रय को ग्रहण करें, तब भय से मुक्त हो जाएंगे। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे होते हैं, सदा समुद्विग्न धियात असत ग्रहात, उनका चित्त सदैव उद्विग्न रहता है, अर्थात विचलित रहता है, बेचैन रहता है, क्योंकि उन्होंने असत को ग्रहण कर लिया होता है। कृष्ण सत हैं, कृष्ण से अतिरिक्त या विभिन्न या विमुख जो भी कुछ है, अर्थात माया, ये असत है। तो जो कृष्ण के शरण में नहीं है, जो कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहे हैं, वो असत का आश्रय लेते हैं। असत का आश्रय लेने के कारण उनका मन, उनका चित्त सदैव भ्रमित और बेचैन रहता है। इसलिए अक्रूर जी कहते हैं कि ऐसे भय का इलाज बहुत सरल है। और इलाज है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श हमारे सर पे हो जाएगा, फिर निर्भयता प्रदान कर देंगे भगवान हमें। भगवान श्री कृष्ण के कर कमल या जो कर हैं उनकी तुलना भी कमल से की गई है, क्योंकि कमल पवित्र है, सुंदर है और अपनी पवित्रता कभी खोता नहीं है। कीचड़ में रहने के बाद भी वो शुद्ध और सुंदर रहता है। इसलिए कमल का और एक अर्थ है या शब्द है पंकज। पंक अर्थात मिट्टी या कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। तो पंक या कीचड़ में से जन्म लेकर भी सुंदर और पवित्र जो रहता है वो है पंकज, कमल। तो यहां जब अक्रूर जी श्री कृष्ण के कर कमलों की बात करते हैं तो कहते हैं निज हस्त पंकजम। हस्त पंकज, हस्त अर्थात हाथ, पंकज कमल। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण, उनके कर, उनका मुखारविंद इत्यादि, इन सब की तुलना कमल से की जाती है बार बार श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी। बिल्वा मंगल ठाकुर का प्रसिद्ध श्लोक आप सबने अवश्य सुना ही होगा, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो वटपत्रशायी कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो कृष्ण जिन्होंने कि बाल रूप धारण करके एक वट पत्र के ऊपर शयन कर रहे हैं, वट वृक्ष का जो पत्र होता है उसके ऊपर। और वो ऐसे कब लेटते हैं, जबकि उन्होंने सारी सृष्टि को निगल लिया होता है और अपने उदर में धारण कर लिया होता है, उस समय थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो शयन करते हैं। जैसे हम कुछ भारी भोजन ले लेते हैं तो थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, लेट जाते हैं। तो भगवान सारे सृष्टि को निगल लेते हैं। जब प्रलय का समय होता है, सृष्टि के संहार करने का समय होता है, फिर बाल रूप धारण करके ऐसे एक वटपत्र में शयन करते हैं जो कि प्रलय जल में तैर रहा होता है। और उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, करारविंदेन अपने कर कमलों से पदारविंद, अरविंद भी कमल है, करारविंदेन पदारविंदम अपने कर कमलों से उन्होंने अपने चरण कमलों को पकड़ लिया है और फिर क्या किया है, पदारविंद के साथ मुखारविंदे विनिवेश यंतम, फिर अपने चरण कमलों के अंगूठों को फिर उठाकर उन्होंने अपने मुख में डाल दिया है, मुखारविंद में, और अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, और इस तरह वो वट पत्र के ऊपर शयन कर रहे हैं। ऐसे बाल मुकुंद का मैं स्मरण करता हूं, ये है ये श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण के कर कमल विशेष करके शरणागत भक्तों के लिए है। और अक्रूर जी आगे कहते हैं कि पुरंदर अर्थात इंद्र, इंद्र तो पद है ना, पुरंदर इंद्र का नाम है, पुरंदर को इस समय इंद्र का पद मिला है इसलिए हम उन्हें इंद्र भी कहते हैं। तो पुरंदर और बलि महाराज भी आगे चल के इंद्र बने थे। तो अक्रूर जी याद कर रहे हैं कि दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में कुछ दान दिया था और उसकी वजह से उनको इंद्र का पद प्राप्त हुआ। तो उस समय बलि महाराज और इंद्र के, पुरंदर के मन में इच्छा थी इंद्र पद या राजपद की प्राप्ति की, तो भगवान ने पूर्ण कर दी अपने, क्योंकि उनके कर कमलों से उन्होंने ये दान स्वीकार किया था। तो भगवान के हाथों में कुछ दान देने से भगवान सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। परंतु इंद्र के पद चिन्हों में इस मामले में चलने की आवश्यकता नहीं है, हमें वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ चाहा नहीं, कोई भौतिक वरदान नहीं चाहते थे वो। इसलिए अक्रूर जी यहां भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि जब रास लीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों को गोपियों के मुखारविंद से स्पर्श किया उनका पसीना निकालने के लिए, तो उस समय गोपियों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं, उनकी थकावट दूर हो गई रास लीला करके, और गोपियों के जो मुखारविंद में सौगंधिक नाम के फूल का सुगंध है वो श्री कृष्ण के कर कमलों में आ गया, ऐसे अक्रूर जी कहते हैं। ये सौगंधिक फूल जो है ये मानस सरोवर में पाया जाता है, विशेष प्रकार का एक फूल है ये, बहुत सुगंधित है। महाभारत में भी इसका वर्णन आता है कि भीम भी इस फूल को ढूंढने के लिए गए थे, जबकि पांडव हिमालय में चले गए थे, वनवास में थे, और द्रौपदी ने कहा था भीम से कि मुझे वो पुष्प लेकर आओ, क्योंकि एक सौगंध का पुष्प जो है हवा से बहते हुए आके यहाँ गिर पड़ा था, इसलिए भीम वहां गए थे, आखिर लेकर ही आए सौगंध का पुष्प। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का सुगंध है। आगे अक्रूर जी फिर अपने ध्यान को आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि देखिए बड़ी विचित्र बात है, मैं तो श्री कृष्ण के शत्रु का एक मंत्री हूं, मैं उनका दूत बन के व्रज भूमि में आ रहा हूं। वैसे श्री कृष्ण किसी के शत्रु नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति यदि कृष्ण को शत्रु मानता है तो कृष्ण उस प्रकार से बर्ताव करते हैं उस व्यक्ति के साथ। कृष्ण के मन में ऐसे द्वेष या द्वंद्व नहीं रहते हैं। बद्ध जीव के मन में ऐसे द्वंद्व होते हैं, वो मानता है कि कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा शत्रु है, परंतु भगवान ऐसे भेद नहीं करते हैं। कम से कम उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं होती है। तो खैर, अब कंस तो शत्रु मानता था कृष्ण को, और अक्रूर तो कंस के मंत्री थे, और कृष्ण को बुलाने जा रहे थे कंस के आदेश पर मथुरा। किस लिए? कंस कृष्ण की और बलराम की हत्या करना चाहते थे इसलिए। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं, वैसे साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ये जघन्य कार्य है, हम किसी के पास जा रहे हैं कपटी स्वभाव से उनको बुलाने के लिए धनुर्यज्ञ के नाम पर, और साथ साथ वहां मल्लयुद्ध आदि होगा, प्रतियोगिताएं होगी, स्पर्धाएं होंगी, इस बहाने हमको बुला रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे कि राजा कंस का इरादा है कि वो श्री कृष्ण और श्री बलराम की हत्या करे। तो वैसे देखा जाए तो ये कपटी काम है, कोई अच्छा काम तो है नहीं। और अक्रूर जी कंस के दूत बन के इस उद्देश्य से वहां जा रहे हैं। फिर भी अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि हालांकि मैं ऐसे दुष्ट कंस का प्रतिनिधि बन के जा रहा हूं, फिर भी श्री कृष्ण अंतर्यामी होने के कारण, मेरे हृदय में भी स्थित होने के कारण पहचान जाएंगे कि मेरी सच्ची भावना क्या है, कि मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मैं तो जानता हूं कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, अपनी रक्षा करने की बात तो दूर है, समस्त जगत की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो श्री कृष्ण को कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इस बात का अटूट विश्वास और ज्ञान अक्रूर जी को भली भांति था। इसलिए अक्रूर जी को कोई डर नहीं था कि कहीं कृष्ण को मैं लेकर आया और कृष्ण को हानि पहुंची तो क्या होगा। अक्रूर को तो पता था कि ये कृष्ण की लीला है, अब वृंदावन की लीला समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आना चाहते हैं, मथुरा लीला प्रारंभ करना चाहते हैं। कृष्ण का भला कौन कुछ बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो कृष्ण अच्छी तरह से जानेंगे कि मैं उनका भक्त हूं और मैं भी यदुवंशी हूं, मैं रिश्तेदार हूं। तो हालांकि मैं ऐसे कार्य से आया हूं जो बाह्य दृष्टि से लगे कि कपटी है, फिर भी मेरे भक्ति भाव को समझेंगे कृष्ण और मुझे ठुकराएंगे नहीं, मेरा स्वागत करेंगे। तो ऐसे अक्रूर जी मन ही मन में सोच रहे हैं, जैसा कि पहले दिन में हम बता रहे थे कि अक्रूर जी के साथ में अन्य थोड़े बहुत यदुवंशी थे जो कि कंस के साथ अभी तक रहे थे। वैसे कई और यदुवंशी थे जो अंधक, भोज आदि वंश के बहुत सारे लोग जो कंस को छोड़कर दूर कहीं इधर उधर भाग गए थे, यहां वहां छुप के रह रहे थे, क्योंकि कंस उनके प्रति बहुत अन्याय और अत्याचार करता था। परंतु अक्रूर जी जैसे थोड़े लोग बैठ गए थे उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आगे श्री कृष्ण यहां प्रकट होंगे, भविष्यवाणी तो हो चुकी थी कि आठवां पुत्र देवकी का वो कंस के वध का कारण बनेगा, और इसलिए श्री कृष्ण अवश्य मथुरा आएंगे, दर्शन देंगे और अपनी लीला करेंगे। तो वो अपनी आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, श्री कृष्ण की लीला को भी देखना चाहते थे, इसलिए वो रहे थे। और जब कंस ने अक्रूर को बुलाया और आदेश दिया कि जाके कृष्ण और बलराम को लेकर आओ, तो अक्रूर जी समझ गए कि अब समय आया है। वैसे कंस अपने मृत्यु को पुकार रहा है, निमंत्रण दे रहा है, वो तो रही बात, ठीक है, भगवान तो प्रकट हुए हैं इसी उद्देश्य से, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। परंतु मैं तो जा रहा हूं भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, और भगवान तो मुझे सही तरह से पहचान लेंगे। तो इस निष्ठा से आगे गए अक्रूर जी। चलते चलते फिर और सोचने लगे कि जब मैं भगवान के सामने खड़े रहूंगा हाथ जोड़कर करबद्ध अवस्था में खड़े रहकर प्रेम भरे नेत्रों से उनका दर्शन करूंगा, उनके सुंदर रूप का पान मैं करूंगा मेरे आंखों के द्वारा, तो वो उनकी कृपा दृष्टि, उनका प्रेम कटाक्ष मेरे ऊपर अवश्य देंगे रखेंगे, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उनके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान होगी, उनको खुशी होगी मुझे देखकर, क्योंकि वो जानेंगे कि मैं उनका भक्त हूं। अपने भक्तों को देखकर भगवान सदैव प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम जब मंदिर में आते हैं न केवल भगवान का दर्शन करने आते हैं, परंतु भगवान के सामने आके उनको भी आनंद देना चाहते हैं कि प्रभु हम आपके सामने भी आए हैं, हम भी आपके छोटे से भक्त हैं। अक्रूर जी जैसे भक्त तो हम नहीं हैं, हम तो छोटे से साधारण भक्त हैं, फिर भी आपके सामने आए हैं। आशा करते हैं कि आपका दर्शन करने आए आपको इससे थोड़ी प्रसन्नता हुई होगी। तो भगवान भी भक्तों को देखना पसंद करते हैं। तो अक्रूर जी ऐसा सोच रहे हैं, और फिर करबद्ध अवस्था में ही मैं प्रणाम करूंगा, उनके चरणों में मैं पड़ा रहूंगा, और उस समय मेरे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, कलमश हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। सारे संदेहों को, संशयों को त्याग के मैं दिव्य आनंद में स्थित हो जाऊंगा। ऐसे आनंद ध्यान कर रहे हैं अक्रूर जी। देखिए, भक्ति इतनी प्रबल है कि वो यदि मन में भी की जाए तो बहुत शक्तिशाली होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में ही बैठे हैं और मन में सोचते रहें कि प्रवचन में क्या बोला जा रहा होगा। यह आकर भी सुनना होगा, क्योंकि श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। अक्रूर जी की तरह हम स्मरण तब कर पाएंगे जब हमारा श्रवण पर्याप्त होगा। श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो स्मरण कहां से होगा? दिन भर हम किसी विषय के बारे में सुनते रहते हैं तो उसी चीज का स्मरण करते रहते हैं, वही चीज मन में घूमती रहती है बार बार दिन भर। तो यदि हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण सतत हो हमारे मन में, तो अधिक से अधिक श्रवण और कीर्तन हमें करना चाहिए, अन्यथा स्मरण संभव नहीं है। अक्रूर जी के हृदय में प्रेम है, इसलिए वो इस तरह का स्मरण कर पा रहे हैं और ऐसे आनंद का अनुभव वो कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में एक पौराणिक कथा रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि एक ब्राह्मण थे, प्रतिष्ठानपुर नाम के स्थान में, बहुत गरीब थे, परंतु वो भगवान की ऐश्वर्यशाली आराधना करना चाहते थे। उनके पास कोई सामग्री तो थी नहीं, विग्रह भी नहीं था, और सेवा के लिए कोई भी सामग्री न होने के कारण उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं मन ही मन में सारी सेवा कर लूंगा। तो मन में उन्होंने भगवान का सुंदर विग्रह बनाया, जगह जगह से पवित्र नदियों से जल ले आकर उनको अभिषेक आदि कराया। मन की तो कोई सीमा नहीं है ना, मन में तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से भौतिक कार्य भी हम कुछ भी कर सकते हैं मन से, आध्यात्मिक कार्य भी कर सकते हैं। जो चीज बुराई के लिए प्रयोग की जा सकती है वो अच्छाई के लिए भी। तो वही मन जो हमारा दुश्मन है बद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वो मन हमारा मित्र बन जाएगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब हम मन को वश में करेंगे तो मन हमारा मित्र हो जाएगा, जब मन वश में नहीं होगा तो वही मन हमारा शत्रु बन जाएगा। जब मन मित्र बन जाएगा तो हम भगवान की सेवा में उस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे अक्रूर जी कर रहे हैं, जैसे वो ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर के कर रहे थे, और उन्होंने इतने शानदार अर्चा सेवा की, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, तरह तरह के फूल मालाएं और आभूषण वस्त्र श्रृंगार, इतना बढ़िया उन्होंने सेवा कर दी है भगवान का कि इसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि अब तो कोई सीमा नहीं है ना। यहां मंदिर में जब हम भगवान के लिए कोई व्यवस्था करना चाहते हैं, कोई श्रृंगार करना चाहते हैं या कोई फेर बदल करना चाहते हैं मंदिर में, तो बहुत सोचना पड़ता है धन कहां से आएगा, कैसे खर्च करेंगे, क्या होगा। लेकिन मन में जब कर रहे हो तो क्या सीमा है, क्या डर है, कुछ भी सोच सकते हैं, कोई सीमा नहीं। तो इस ब्राह्मण ने जी भर के भगवान की सेवा कर ली। जब दूध उबाल रहे थे अपने ध्यान में खीर बनाने के लिए, तो जब दूध उबल गया था तो वो देखना चाहते थे कि दूध गर्म हुआ या नहीं पर्याप्त, तो अपनी उंगली रखी उस दूध में तो दूध काफी गर्म हो चुका था, तो उनकी उंगली जल गई ध्यान में। परंतु अचानक उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने देखा कि वास्तव में उनकी उंगली, उनके स्थूल शरीर के ऊपर जो उंगली जो है वो जल गई थोड़ी बहुत। इसका मतलब है कि भगवान मानसिक सेवा भी इस तरह से स्वीकार करते हैं, इसलिए भक्त को कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कभी मंदिर नहीं आ सकते हैं, भक्तों के संग में नहीं आ सकते हैं, शारीरिक रूप से कोई हम सेवा नहीं कर पाते हैं बीमारी के कारण या किसी और कारण से, मन में हम अवश्य कर सकते हैं। कितने भी हमारी बीमारी क्यों ना हो, भगवान के बारे में सोचने से हमें कौन रोक सकता है। इसलिए अक्रूर जी ने जिस तरह से ध्यान करना प्रारंभ किया वो हमें सिखला रहे हैं कि हमें भी कैसे ध्यान करना चाहिए। इसलिए तो ऐसे ध्यान का वर्णन, ऐसे स्तुतियां, ऐसे वर्णन आदि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में पाए जाते हैं, हम सबको सिखाने के लिए कि हमें कैसे भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, कैसे उनका स्मरण करना चाहिए। हर चीज यहां श्रीमद् भागवत में बताई हुई है। राजा परीक्षित से सीख सकते हैं कैसे श्रवण करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी से सीख सकते हैं कैसे कृष्ण के बारे में कीर्तन या बोलना चाहिए, प्रहलाद महाराज से सीख सकते हैं कि कैसे हमें स्मरण करना चाहिए, अक्रूर जी से, लक्ष्मी जी से सीख सकते हैं कि कैसे भगवान के चरणों की सेवा हम कर सकते हैं, पृथु महाराज से सीख सकते हैं भगवान के अर्चा सेवा कैसे कर सकते हैं, अक्रूर जी से सीख सकते हैं वंदना कैसे करनी है, भगवान की स्तुति कैसे करनी है, अर्जुन से सीख सकते हैं भगवान का सखा कैसे बनना है, हनुमान जी से सीख सकते हैं भगवान का दास कैसे बनना है, बलि महाराज से सीख सकते हैं आत्मसमर्पण कैसे करना है। भक्ति के हर एक कार्य के लिए, हर एक प्रकार के सेवा के लिए यहां एक से बढ़कर एक आदर्श उदाहरण है। उनके जीवनी से, उनके उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि हमें इन सेवाओं को कैसे संपन्न करना चाहिए। अन्यथा हम मनमाने ढंग से कुछ करेंगे, हो सकता है वो गलत भी हो। हालांकि यदि हमारा हृदय निष्कपट है और बड़े निष्कपट और सरल भाव से, भक्ति भाव से हम भगवान को कुछ, भगवान की कुछ स्तुति करते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। जैसे छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ को अपनी तोतली आवाज में कुछ कहता है, उसका व्याकरण ठीक नहीं रहता, उच्चारण ठीक नहीं रहता, हो सकता है शब्दों का भी प्रयोग ठीक से नहीं करता, परंतु माँ तो ऐसे नहीं डांटती कि अभी तुम्हें मैं सुनूंगी नहीं क्योंकि तुमने उच्चारण ठीक से नहीं किया। माँ तो बच्चे की पुकार सुनेगी, बच्चे के पास अवश्य जाएगी, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर है। ठीक इसी तरह से जब कोई भक्त आश्रित रहता है भगवान के चरण कमलों के प्रति, निस्सहाय भाव से पुकारता है भगवान को, और ऐसे आश्रित भाव में वो भगवान की स्तुति करता है, तो अवश्य भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। इसलिए ऐसे स्तुति, प्रार्थना, स्तोत्र, ध्यान आदि को अवश्य स्वीकार करते हैं। फिर भी जब आगे कुछ और बढ़ानी होती है बात, और कुछ स्तुति करनी होती है, तो हमें ज्ञान चाहिए ना कि क्या सही स्तुति होनी चाहिए, क्या गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की स्तुति करते करते हम कुछ गलत कह बैठे जो भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। चैतन्य लीला में ऐसे एक प्रसंग आता है कि बंगाल से एक बार एक ब्राह्मण आए जगन्नाथपुरी, जहां चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में रहा करते थे। ये ब्राह्मण भगवान आचार्य नाम के महाप्रभु के पार्षद के मित्र थे, तो भगवान आचार्य के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक नाटक लिखा है जिसमें कि मैंने जगन्नाथ भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया है, जरा सुनो तो सही, थोड़े भक्तों को भी बुला लो। तो ये भगवान आचार्य जो है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद तो थे, शुद्ध भक्त तो थे, परंतु थोड़े भोले भाले से थे, और जिन भक्तों को बुलाया उन्होंने वो भी भोले भाले से थे। तो उन्होंने सब ये नाटक की थोड़े पंक्तियां, श्लोक आदि सब सुन लिए, उनको बड़ा पसंद आया, उन्होंने साधु साधु कहना शुरू किया, कितनी अच्छी स्तुति आपने की भगवान जगन्नाथ की और श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो भगवान आचार्य चाहते थे कि ये ब्राह्मण महाप्रभु के पास जाए और महाप्रभु को ये नाटक सुनाए, लेकिन महाप्रभु ने एक नियम बनाया हुआ था कि जब तक कोई स्वरूप दामोदर के पास जाकर पहले उनकी रचना नहीं सुनाता, और जब तक स्वरूप दामोदर आगे जाने की अनुमति नहीं देते, तब तक किसी की रचना चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक व्यक्ति भक्ति के सिद्धांतों में भली भांति प्रशिक्षित नहीं होता है, तब तक कोई निश्चितता नहीं है कि उसके रचनाओं में सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ होगा या नहीं होगा, बल्कि निश्चित ही कुछ न कुछ गड़बड़ होगा ही होगा, कहीं न कहीं को ऐसे वो बात तो कहेगा ही जो कि सही नहीं है। इसको रसाभास कहते हैं। तो स्वरूप दामोदर के पास गए भगवान आचार्य, उन्होंने कहा देखो बंगाल से एक ब्राह्मण आए हैं, बहुत विद्वान है, बहुत सुंदर कविता या नाटक लिखा है उन्होंने, जगन्नाथ भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया है, जरा आप सुनो और यदि आपको पसंद आए तो फिर ये जाके महाप्रभु के सामने सुनाएंगे। तो तुरंत स्वरूप दामोदर ने कहा अरे तुम तो बहुत भोले भाले ग्वाल बाल हो, अब इधर ऐसे वैसे कवियों के रचनाओं को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हो गए हो, क्या तुम नहीं जानते कि ऐसे यद्वा तद्वा कवि, वो कहते हैं बंगला में, अर्थात ऐसे वैसे कवि जिनको भक्ति के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, न ही उनको सही व्याकरण का ज्ञान है, न अलंकार आदि का ज्ञान है, नाटक कैसे लिखने चाहिए ये सब कुछ नहीं पता है, तो वो क्या लिखेंगे, सब गलत ही लिखेंगे। यदि नाटक किसी को लिखना है तो रूप गोस्वामी की तरह लिखना चाहिए। तो छोड़ो इन बातों को, जब तक ये भक्त नहीं बनता ठीक से, तब तक इनकी रचनाओं को सुनने से कोई लाभ नहीं है। फिर भी बार बार भगवान आचार्य के कहने पर स्वरूप दामोदर ने सोचा कि इनका दिल ना दुखाएं, चलो सुन ही लेते हैं। तो सुनने बैठ गए, तो पहला श्लोक उन्होंने कहा ब्राह्मण ने, जिसमें कि उन्होंने संस्कृत श्लोक था, जिसमें कि उन्होंने कहा, मैं एक अनुवाद बता रहा हूं उस श्लोक का, कि भगवान जगन्नाथ एक ऐसे शरीर हैं जिनमें कि वो भगवान परम सत्य ने जिनका कि स्वर्ण रंग है प्रवेश किया है, और अब उन्होंने उस जड़ शरीर को जीवित बनाया है। तो ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ का जय जयकार हो, और इस तरह से उनका गौरव जो है सारे पृथ्वी पर फैल गया है। तो सारे भक्तों ने कहा साधु साधु, बहुत अच्छा, कितनी सुंदर बात सुनाई। सरू दामोदर को बात सहन नहीं हुई, अरे मूर्ख चुप बैठो, तुम्हें पता है तुमने क्या लिखा है, कुछ भी लिखते हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिखने का अर्थ क्या है। तुमने तीन गलतियां की हैं इस एक ही श्लोक में। पहली बात, तुमने भगवान जगन्नाथ के शरीर को जड़ पदार्थों का बनाया हुआ शरीर मान लिया है, जैसे कि हम लोगों का शरीर है। दूसरी बात, तुमने चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण जीवात्मा समझा है जो कि किसी शरीर में प्रवेश करके शरीर को जीवित करता है, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं। और तीसरी जो गलती तुमने की है वो ये है कि तुमने भगवान के शरीर और आत्मा दोनों में भेद किया है, जबकि वास्तव में देह देही विभेदोयम नेश्वर ईश्वरे क्वचित। तो कूर्म पुराण में बताया गया है कि भगवान के शरीर और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुमने अंतर बताया है, इसलिए तुम्हारी तीसरी गलती है। तो आगे स्वरूप दामोदर प्रवचन देने लगे उनको, और इस तरह से दशा हो गई उस बेचारे ब्राह्मण की कि वो बहुत शर्मिंदा हो गए और सर झुकाकर बैठ गए, भयभीत हो गए, और सारे भक्त उस समय कहने लगे हाँ हाँ इन्होंने गलत किया, गलत कहा उन्होंने। फिर स्वरूप दामोदर ने सोचा बेचारा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो गलती कर ली ना। फिर उन्होंने आदेश दिया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। तुम्हें यदि भागवत समझना है, भागवत का सिद्धांत समझना है, तो एक व्यक्ति भागवत के पास जाना चाहिए, उनसे भागवत सुनना चाहिए। इसलिए जाओ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय स्वीकार करो, तब ये सारी बातें तुम्हें समझ में आएंगी। इस तरह से जब हमारे सिद्धांतों के ऊपर हमारी प्रार्थना, हमारा स्मरण सब कुछ रहता है, तो फिर हमारी जो स्तुतियां हैं वो भगवान को प्रसन्न करेंगी, क्योंकि उसमें भाव भी रहेगा और उसका जो अर्थ है वो भी सही रहेगा। यदि हम सोचें कि केवल भाव से हम कुछ भी कह देंगे, शुरुआत के लिए ठीक है, शुरुआत की अवस्था में भगवान कुछ भी ले लेंगे। जब माँ अपने छोटे बच्चे की तोतली बोली को सुन लेंगे, बच्चा कुछ भी बड़बड़ाएगा माँ को बुरा नहीं लगता, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है, नौजवान हो जाता है, फिर बड़बड़ाता है तो माँ को बहुत बुरा लगता है। वही बातें जो बचपन में बच्चा कहता था उसका असर एक प्रकार का होता था, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उस समय कुछ भी कह देता है अपनी माँ को या पिता को तो बुरा लगता है, बचपन में नहीं लगता। तो जब हम शुरुआत में भक्ति में रहते हैं ठीक है, हम गलतियां कुछ कर लेते हैं, ऐसे वैसे कुछ कह भी दिया, सोच भी दिया, परंतु यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों के संग में आकर श्रवण बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छे तरह से इन ग्रंथों का कि ग्रंथों की रचना की है, इन सारे तत्वों का विवरण इतने सुंदर ढंग से किया है कि हमें इनको पढ़ के बहुत लाभ होगा, फिर हमारा स्मरण जो है वो बढ़ सकता है और अक्रूर जी के पद चिन्हों में हम चल सकते हैं। भगवान की प्रशंसा करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी एक कला है, ये एक विज्ञान है। ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गहरा व्यक्ति आके भगवान की प्रशंसा करना शुरू करे, संभव नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है, जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, वो कैसे प्रशंसा करेगा भगवान की। बद्ध अवस्था में लोगों की वृत्ति ये होती है कि वो किसी इस जड़ जगत के व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहते हैं। कोई सुंदर व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो, बलवान व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, वैरागी व्यक्ति हो, तो ऐसे लोगों के, इस दुनिया के लोगों की प्रशंसा करने में ही सभी लगे हुए हैं। अखबारों को देखिए, पत्रिकाओं को देखिए, उपन्यासों को पढ़िए, और जगह जगह दुनिया में क्या संवाद वार्तालाप होते हैं लोगों के बीच में, उनको सुनिए। बस यही है, या तो हम किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं या किसी की निंदा कर रहे होते हैं। परंतु दुनिया की प्रशंसा और निंदा को छोड़कर भगवान की प्रशंसा हमें करना सीखना चाहिए, इसे एक आदत बनानी चाहिए। जब बार बार करते रहेंगे तो आदत हो जाती है। आदत क्या, कब होती है, कैसे होती है? जब कोई कार्य हम बारंबार करते हैं। बुरी आदतें जल्दी ही लग जाती हैं और तोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। अच्छी आदतों को लगना बहुत मुश्किल है, समय लगता है, टूटने में बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और ये एक ऐसी अच्छी आदत है जिसको, जिसका अनुशीलन करके ही लंबे समय तक ये हमारे लिए फिर स्वाभाविक रूप से एक वृत्ति बन सकती है हमारी। अन्यथा हम अन्य जगत के व्यक्तियों की तरह है दुनिया के लोगों की प्रशंसा ही करते रहेंगे। वैसे एक सुभाषित है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्धव प्रतिजायते परस्परम प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि। एक बार हुआ ये कि ऊंटों का विवाह हुआ और पत्रिका सब जगह गई, शादी की पत्रिका, तो गधे के पास भी पत्रिका पहुंची तो गधा भी गया। यही मिलेनियम गार्डन में हुआ था, पास में तरह तरह का संगीत वगैरह सब बज रहा था वहां, तो तरह तरह के पशु आए वहां पे, गए शादी में, तो वहां मंच आदि था, तो दोनों ऊंट जो हैं, पति पत्नी वर वधु दोनों ऊपर थे और सारे जानवर आए थे एक एक करके, उनमें से गधा भी आया वहां पे। गधा आया और उन्होंने देखा कि उन दोनों वर वधु जो हैं बहुत सज धज के आए थे, शादी है आखिर में, सज धज के ही तो आएंगे। तो फिर गधा जब आया तो वो उनकी स्तुति करने लगा, अहो रूपम, आप दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। अब ऊंट जो है अनेक चीजों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु उनमें से सौंदर्य नहीं है। ऊंट अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है कभी, क्योंकि ऊंट का सौंदर्य नहीं है, ऊंट तो बड़ा कुरूप है दिखने में। परंतु ये गधा क्या कह रहा था, अहो रूपम, आप दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वो दोनों ऊंट थे वो भी गधे की प्रशंसा करने लगे, परस्परम प्रशंसति, वो कहने लगे अहो ध्वनि, अरे तुम्हारी आवाज, तुम्हारी संगीत इत्यादि कितनी मधुर है। अब जो गधा होता है वो अनेक चीजों के लिए प्रसिद्ध होता है, लेकिन मधुर संगीत उनमें से नहीं है। गधा कभी मधुर संगीत नहीं कर सकता, पैदा कर सकता। तो इस तरह से वो एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। तो ये दुनिया की दशा है, भगवान की प्रशंसा करने में लोगों की रुचि नहीं, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहें, प्रभुपाद जी कहा करते थे, दुनिया की रीत क्या है, एक व्यक्ति दूसरे की पीठ खुजाएगा, दूसरा पहले की पीठ खुजाएगा, इस तरह से एक दूसरे को प्रसन्न रखेंगे। जब पीठ खुजाते खुजाते कोई गड़बड़ हो जाती है, दोनों शत्रु बन जाते हैं। तो भगवान की प्रशंसा, भगवान की महिमा गान करने का प्रयत्न करना चाहिए और अक्रूर जी जैसे भक्तों से सीख लेना चाहिए। तो अब अक्रूर जी आगे सोच रहे हैं कि जब भगवान कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रखेंगे तो मेरे सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे और दिव्य आनंद की प्राप्ति मुझे होगी, और फिर वो मुझे पहचानेंगे कि मैं उनका सुहृत हूं। केवल सुहृत नहीं, सुहृत तमम, अर्थात उनका सबसे अच्छा मित्र या हितैषी उनका हूं मैं। सुहृत, हृदय हृदय के बहुत करीब होते हैं। देखिए संस्कृत भाषा में मित्रता की कई श्रेणियां होती हैं। अंग्रेजी में केवल फ्रेंड कहते हैं, परंतु संस्कृत में ऐसे कई श्रेणियां हैं। इसे मित्र है, सखा है, सुहृत है, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, हल्के से सूक्ष्म अंतर है इन शब्दों में। तो सुहृत अर्थात वास्तव में जिनका हृदय का बहुत गहरा संबंध है, जो हृदय के बहुत निकट हैं, इसलिए जो सच्चा मित्र होता है, हमारा हितैषी होता है, वो सुहृत होता है। और वो तो केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त हो सकते हैं। इसलिए जब प्रभुपाद जी चिट्ठी लिखते थे अपने शिष्यों को, तो अंत में यही लिखते थे, आपका हितैषी, सदैव आपका हितैषी, आपका सुहृत। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि कृष्ण पहचानेंगे कि मैं उनका सुहृद हूं, उनका रिश्तेदार हूं, और फिर श्री कृष्ण मुझे आलिंगन करेंगे अपनी शक्तिशाली भुजाओं से, और इस तरह से मेरा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा और जो भी भौतिक बंधन है वो चूर चूर हो जाएगा मेरा। और इस तरह से जब भगवान आलिंगन कर लेंगे मुझे, तो मैं नम्रता पूर्वक उनके और बलराम जी के सामने प्रांजलि मुद्रा में हाथ लिए हुए, हाथ जोड़े खड़े हुए और सर झुका के खड़ा रहूंगा, और कृष्ण मुझे बड़े प्रेम के स्वरों में पुकारेंगे, हे तत अक्रूर, हे मेरे प्रिय अक्रूर, जब कहेंगे, और उस समय उस क्षण मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जब भगवान ये दो या तीन शब्द मुझे कहेंगे, दृष्टिपात उनकी पड़ेगी मुझ पर, कृपा दृष्टिपात, और वो ये दो शब्द कहेंगे, हे मेरे प्रिय अक्रूर, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अक्रूर जी सोच रहे हैं, यदि भगवान किसी व्यक्ति को पहचानेंगे नहीं तो उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में प्रभुपाद जी बताते हैं इसी संदर्भ में कि भक्त को चाहिए कि वो इस तरह से अच्छी सेवा करे और अच्छी भक्ति करे भगवान की, कि भगवान उनको पहचानने लगेंगे कि हाँ हाँ ये मेरा भक्त है। देखो वहां बेलगाम में वो बैठे, हाँ वो अच्छे भक्त हैं मेरे, तब हमारा जीवन सफल। अक्रूर जी कहते हैं जी, भगवान किसी को पहचानेंगे नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो भगवान कैसे हमें पहचानेंगे, क्यों पहचानेंगे? जब वो देखेंगे कि बड़े निष्कपट भाव से, बड़े हृदय पूर्वक हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे सेवा करके भगवान के ध्यान को हम आकृष्ट कर सकते हैं, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर अक्रूर जी कहते हैं, वैसे तो श्री कृष्ण किसी के प्रति पक्षपात तो करते नहीं, न उनका कोई मित्र है, न कोई उनका शत्रु है, न तस्य कश्चित् दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष उपेक्ष एव वै। न किसी से वो द्वेष करते हैं, न किसी से अधिक प्रेम करते हैं, सबका सबके साथ उनका बर्ताव या उनका व्यवहार एक समान है। फिर भी तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरद्रुमो यदवत उपाश्रितोर्थदः, क्योंकि भगवान के भक्त बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा करते हैं, इसीलिए भगवान ऐसे उनके प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ऐसी ही बात बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों के प्रति मेरी समान दृष्टि रहती है, नमे द्वेष्यः न अस्ति प्रियः, न किसी के प्रति द्वेष करता हूं, न कोई मेरे लिए अति प्रिय है। फिर भी ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरा भजन करते हैं, मही ते तेषु च अपि अहम्, मैं उनमें रहता हूं, वो मेरे मित्र हैं और वो मेरे और मैं भी उनका मित्र हूं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता है तो मेरा संबंध उसके साथ ऐसे होगा। कोई मेरे साथ शत्रुता का संबंध स्थापित करना चाहता है तो मैं उसकी इच्छा भी पूरी करूंगा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं सभी से प्रेम करता हूं। तो अब अक्रूर ऐसे सोच रहे हैं कि क्योंकि मैं एक भक्त हूं और मैं बड़े प्रेम की भावना से उनके पास जा रहा हूं, इसलिए अब वैसे ही बर्ताव मुझसे करेंगे। परंतु हिरण्यकश्यप रावण जैसे असुर होते हैं तो भगवान का व्यवहार उनके प्रति बड़ा कठोर रहता है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनादि कुसुमादपि, मृदुनि कुसुमादपि, कभी कभी भगवान जो होते हैं वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं, और कभी कभी मृदुनि कुसुमादपि, एक फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। वही भगवान भक्त के साथ फूल जैसे कोमल होते हैं, एक असुर के साथ वज्र जैसे कठोर होते हैं, परंतु इसमें भगवान का कोई भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं कर रहे होते हैं भगवान। तो आगे चल के अक्रूर जी अब सोच रहे हैं, और फिर जब मैं उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं तो श्री कृष्ण के अग्रज उनके बड़े भाई बलराम, जब मैं वहां खड़ा हूं आके मेरे दोनों हाथों को जो कि करबद्ध रूप में हैं, उनको अपने हाथों में कर कमलों में लेंगे और वो भी मुझे आलिंगन करेंगे, और आलिंगन करने के बाद वो मुझे अपने घर ले जाएंगे, वहां बड़े आदर से वो मेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि वैसे मैं तो बुजुर्ग हूं उनके लिए संसारी दृष्टि से। तो वहां ले आकर फिर बड़े आदर से बड़े प्रेम से मेरा स्वागत करके मीठे शब्दों से आदि, फिर मेरे हालचाल के बारे में पूछेंगे कि मथुरा में सब कैसे चल रहा है, कंस की हरकतें कैसी हैं, आशा करते हैं कि ज्यादा कष्ट आपको नहीं हुआ होगा कंस के अत्याचारों से। तो ऐसे सब प्रश्न करेंगे, और फिर सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इस तरह से जैसे जैसे अक्रूर जी ऐसे ध्यान में मग्न थे, सूरज अपने यात्रा एक दिन की यात्रा को समाप्त करने के लिए अब धीरे धीरे जमीन की ओर आ रहा था, और सूर्यास्त का समय जैसे ही हुआ वैसे अक्रूर जी नंदग्राम की ओर पहुंचे। श्रीधर स्वामी बताते हैं कि अक्रूर जी को पता ही नहीं चला कि रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से घोड़े चल रहे हैं, रथ चल रहा है, उनको कोई बाह्य चेतना नहीं थी, बस रथ चले जा रहा है। और क्योंकि ये तो मथुरा के घोड़े थे, कृष्ण के शुद्ध भक्त को ले जा रहे थे कृष्ण के पास, तो घोड़ों को भी बुद्धि थी भगवान की, भाई चलो वहां कृष्ण के पास चलो व्रज में, तो रथ पहुंच गया। और जब पहुंचा वहां व्रजभूमि में, नंदग्राम में, तो फिर क्या हुआ? बहुत सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव जी। आइए इसका पाठ हम करते हैं। दशम स्कंद के 38वें अध्याय का ये 25वां श्लोक है। पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टा मलपाद रेणोः ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवांकुशाद्यैः। पदानि तस्य अखिल लोकपाल, उस समय भगवान ने, अक्रूर जी ने भगवान के चरण कमलों को देखा। पदानि, पदानि अर्थात उनके चरण चिन्ह। किनके चरण चिन्ह थे वो? तस्य, उनके, जो कि अखिल लोकपाल, किरीट जुष्ट, जिनके चरण कमल को स्वीकार करते हैं वही रज, जो कि जो भी लोकपाल हैं ब्रह्मांड के, जो बड़े बड़े देवता हैं, वो अपने किरीट के ऊपर जो स्वीकार करते हैं रज, और वो रज जिन चरणों से आता है, उन चरण कमलों को वो अक्रूर जी वहां देख रहे थे। किरीट जुष्टामल पाद रेणो हो, तो भगवान के चरण कमलों का जो रज है वो ब्रह्मांड के बड़े से बड़े जो देवता हैं वो भी अपने किरीटों पर, अपने सर पे स्वीकार करते हैं। ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानी, और वो कहते हैं कि उनके चरण कमलों, चरण कमल जो है वो अंकित हैं किन चीजों से? अब्ज अर्थात कमल, यव अंकुश आदि, इन चिन्हों से। तो अक्रूर जी यहां इन चिन्हों को देखते हैं और वो जानते हैं कि अब मैं व्रज में पहुंच गया, क्योंकि अब मैं चिन्ह देख रहा हूं। जब हम रेलगाड़ी से आते हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे शहर में जाते हैं, ऐसे कोई ना कोई लक्षण होते जिसे पहचान सकते हैं, हाँ हम इस शहर में पहुंचे हैं, यहां इस जगह में आए हैं। तो व्रज में आते हैं तो कैसे पहचान सकते हैं? अक्रूर जी देखते हैं, हाँ भगवान के चरण चिन्हों से सुशोभित जो रज है, जो भूमि है, ये अब वृंदावन है, तो मैं आ गया हूं। तो 26वें श्लोक में अक्रूर जी कहते हैं, तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम, प्रेमणोर्ध्व रोमाश्रु कलाकुलेक्षणः, रथाद् अवस्कन्द्य सतेष अचेष्टत, प्रभो रमोण्यं घ्रिरजांस्यहो इति। तद मतलब श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन से, दर्शन आह्लाद विवृद्ध संभ्रम, उन चरण कमलों को देखने से ही अक्रूर जी के मन में दिव्य प्रेम उभर आया और उनका हृदय विचलित हो गया ऐसे भावों के लहरों से। प्रेमणोर्ध्व रोमाश्रु कलाकुले क्षणः, और इस तरह उनकी आंखें भर आईं आंसू से, प्रेम के आंसू से, उनके रोंगटे खड़े हो गए उनके शुद्ध प्रेम के कारण, और अपने रथ से उतर के क्या करने लगे? लौटने लगे उस रज में, रथात अवस्कंद्य अर्थात रथ से उतरे और उतर के तेषु अचेष्टत अर्थात लौटने लगे वहां पे। और क्या कह रहे थे लौटते लौटते, प्रभोः अमूनी अंग्री राजांसी अहो इति, ये मेरे प्रभु के चरण रज हैं, मेरे प्रभु के चरणों का को स्पर्श किया हुआ रज है। तो अक्रूर जी ऐसे कहते कहते हुए लौटने लगे व्रज के रज में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भी जब वृंदावन जाते हैं तो सर्वप्रथम जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करेंगे हमें वृंदावन के रज में लौटना चाहिए, जैसे कि अक्रूर जी लौटे बिना कोई विचार किए हुए कि भौतिक जगत में हमारा मान सम्मान क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, हम कौन हैं कौन नहीं हैं, हम जो भी क्यों न हो इस भौतिक जगत में, लेकिन जब हम वृंदावन जाएंगे हमें तुरंत उतर के लौटना चाहिए व्रज रज में। और हमारे शरीर के ऊपर जब व्रज रज का लेप लग जाएगा तो अपना जीवन हमें धन्य समझना चाहिए। कहीं हम ऐसा नहीं सोचें कि अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, खबर पहुंच जाएगी वापस बेलगाम में कि देखो पता नहीं इनको क्या हो गया। कहने दीजिए लोगों को, कोई परवाह नहीं, हम लौटते रहेंगे व्रज के रज में। तो रज का महत्व क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श हुआ है इस रज से, इसलिए तो रज बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि अक्रूर जी कह चुके हैं इस रज को इतना मूल्यवान मानते हैं बड़े बड़े लोकपाल कि प्रतिदिन जब श्री कृष्ण गोचारण लीला करके लौट के आते हैं सायंकाल के समय, तो जैसे कृष्ण आगे चले जाते हैं तो पीछे से आकर शिव जी ब्रह्मा जी इंद्र चंद्र वरुण आदि उस धूली को लेते हैं और अपने किरीट और अपने सर पे रख देते हैं। ये है व्रज का रज। आज भी भक्त ऐसा करते हैं जब व्रज में जाते हैं तो किसी विशेष स्थान से थोड़ा सा रज लेके थोड़े से बोतल में ले लेते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा एक एक कण खा लेते हैं। आजकल सब सोचते हैं कोई बीमारी हो जाएगी क्या होगा, कोई बात नहीं, एक एक कण खाने से कोई समस्या नहीं होगी बल्कि सारी समस्याएं मिट जाएंगी। और उद्धव ब्रह्मा जी ये भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, कृष्ण के चरण कमलों की रज की बात तो दूर है, वृंदावन के निवासियों के चरण कमल के रज जो हैं वो भी इतने पावन हैं, उतने महान हैं कि उद्धव जी सोच रहे हैं कि मुझे साहस नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे मांगूं गोपियों के चरण कमलों के रज को, मेरा वो भी स्थान नहीं है। कृष्ण के चरण कमलों की रज की बात तो दूर रही, गोपियों के चरण कमलों के रज को मांगने के लिए मेरे मन में साहस नहीं है। तो क्या मांगते हैं उद्धव, मांगते हैं कि मैं मेरा अगला जन्म यहां वृंदावन में लूं, एक घास का तिनका में बन जाऊं कहीं किसी एक कोने में व्रज के, जब व्रज की गोपियां इधर उधर जा रही होंगी तो जब चलते चलते उनके चरण कमलों से लग के कोई रज के कण मेरे ऊपर गिरेंगे तब मेरा जीवन धन्य होगा। ऐसे उद्धव जी सोच रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है उद्धव। उद्धव तो श्री कृष्ण के मथुरा के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन जब वृंदावन आए तब उन्होंने उनको पता चला कि वास्तव में उनका प्रेम तो कुछ भी नहीं है वृंदावन के निवासियों के भक्ति के सामने। ब्रह्मा जी वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी इसी तरह से प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवत में। व्रज रज श्री कृष्ण से अभिन्न है, भगवान से संबंधित जो भी कुछ है वो भगवान से अभिन्न है। जैसा कि आप जानते हैं व्रज में जो भी कुछ है वो चेतन है, चाहे वो रज हो, जल हो, हवा हो, पत्थर हो, और पशु पक्षी हैं वो तो है ही चेतन, परंतु ये पत्थर रज आदि भी जीवित हैं, चेतन हैं, वो भी व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व है। तो एक बार एक प्रश्न किया, हैदराबाद में जब प्रभुपाद जी गए हुए थे तो एक भक्त ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, आपकी किताबों ने हमने पढ़ा है कि व्रजरज भी, व्रजरज का भी व्यक्तित्व है, ये कैसे हम समझ सकते हैं? ठीक है, मोर है, गाय है, इनका व्यक्तित्व है, हम समझ सकते हैं, परंतु रज, रज का व्यक्तित्व कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अब हम कहाँ हैं? हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ की मिट्टी थोड़ा उठा लो। तो भक्त ने मिट्टी उठाई, अपने मुट्ठी में पकड़ लो। ठीक है, अब इस मिट्टी से प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना का क्या पूरी हो जाएगी? तो भक्त ने कहा, नहीं। अब इसे फेंक दो, अब वृंदावन का रज तो ले लो और प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये सबूत है कि व्रज रज चेतन है, भगवान से अभिन्न है और इसका व्यक्तित्व है। इस तरह से प्रभुपाद जी ने व्रज रज की महिमा को बतलाया अपने शिष्यों को। तो अब यहां अक्रूर जी लौट रहे हैं और लौटते लौटते अपने आप के जीवन को सफल मान रहे हैं, अपना जीवन धन्य हो गया ऐसे मान रहे हैं। और अब उनके मन में जो भी दुख था, जो भी संशय थे, जो भी अपने प्रतिष्ठा आदि की भावना थी कि मैं यदुवंशी हूँ, मैं भी एक राजकुमार हूँ, इतने ऊंचे कुल से हूँ, इतना धनी हूँ आदि, इन सारे विचारों को पूरी तरह से त्याग कर अक्रूर जी अब केवल उस व्रज रज में लौटने लग गए बस। और इसी में उनको दिव्य आनंद मिला। तो ऐसे इस समय जब अक्रूर जी लौटे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन किया। और क्या दर्शन किया, कृष्ण और बलराम कैसे दिख रहे थे, यदि आप जानना चाहते हैं तो कल शाम को यहाँ पर आप सब आइएगा। और इस अध्याय की समाप्ति हम कल कर लेंगे, जिसमें शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से कृष्ण बलराम का वर्णन करते हैं और आगे चल के अक्रूर के साथ कैसे बर्ताव उनका होता है कृष्ण बलराम का, वो भी शुकदेव गोस्वामी बताएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।